पृष्ठ संख्या 3, समकालीन इतिहास। विश्व इतिहास के 15वीं 17वीं सदी से आरंभ होने वाले काल को आधुनिक माना जाता है। आधुनिक काल में आधुनिक शब्द के प्रयोग से यह समझा जा सकता है कि इसमें इस काल की शुरुआत से लेकर आज तक के दौर में जिसमें हम रहते हैं घटित विकास क्रमों का समावेश है। लेकिन अब से 2-3 दशक पहले तक इतिहासकार उस काल के बारे में लिखने से आमतौर पर झिझकते थे जिसमें स्वयं वे या उनके समकालीन लोग जिसमें से कुछ उम्र में उनसे काफ़ी बड़े होंगे जी रहे हैं। 1950 और 60 वाले दशकों में बल्कि 1970 वाले दशक में भी लिखे और पढ़ाए जाने वाले इतिहास, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का वर्ष या 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का वर्ष तक आकर खत्म हो जाते थे। कुछ तो उससे भी काफी पहले 1914 या 1918 प्रथम विश्व युद्ध के क्रमशः आरंभ और अंत के वर्ष में ही समाप्त हो जाते थे। इसके कुछ उदाहरण तो काफी ठोस थे। इतिहासकार जिस काल में जी रहा है उस काल का इतिहास लिखने के लिए उसे जिन स्रोतों की आवश्यकता होगी उनमें से कई महत्वपूर्ण स्रोत उसे उपलब्ध नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए सरकार के कार्यकलाप से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण सरकारी कागजात इतिहासकारों को अध्ययन के लिए 50-60 साल बाद, कुछ क्षेत्रों में 30 साल बाद ही सुलभ हो पाते हैं। सरकार की नीतियों के निर्धारण तथा उनके कार्यों के संचालन से संबंधित कई व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और उच्च अधिकारी अपने कार्यकलाप की डायरियां या संस्मरण लिखते रहते हैं। ये डायरियां और संस्मरण जिन्हें निजी कागजात कहा जाता है सामान्यतः लेखकों के जीवन काल में प्रकाशित नहीं किए जाते और किए भी जाते हैं तो उनके ऐसे अंशों को निकाल दिया जाता है जिनसे उनकी या उनकी सरकार की विकृत छवि उभरे। सरकारी प्रलेख और निजी कागजात बहुधा संवेदनशील किस्म के मामलों या जीवित व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और उनके प्रकाशन से सरकार या ऐसे व्यक्ति तत्काल दुविधापूर्ण स्थिति में पड़ सकते हैं। विभिन्न देशों के नेताओं के बीच की वार्ताओं के कुछ विवरण ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें प्रकाशित कर लिया जाए तो उनके व्यक्तिगत संबंध या संबंधित देशों के आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी होता है कि सरकार कुछ ऐसे कागजात तो प्रकाशित कर देती है जिनसे प्रकट हो कि उनकी नीतियां और कार्रवाइयां स्वयं उनके देश के लिए ही नहीं सारी दुनिया के लिए हितकर थी, लेकिन ऐसी जानकारी रोके रखती है जिनसे इसके विपरीत निष्कर्ष निकल सकता है। गरज यह कि जानकारी के सभी प्रासंगिक स्रोतों की अनुपलब्धता के कारण बहुत से इतिहासकार काल के वर्षों का इतिहास लिखना उचित नहीं समझते। एक और भी महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से इतिहासकार उस काल का इतिहास लिखने को अनिच्छुक रहते हैं जिसमें वे जी रहे हैं। इतिहास लेखन उचित तथा उपयोगी बौद्धिक कार्य तभी हो सकता है जब उसमें कोई पूर्वाग्रह ना हो। जो इतिहासकार वर्तमान के संबंध में लिखता है वह एक अर्थ में स्वयं भी इतिहास की प्रक्रिया में भागीदार होता है और वह जिन घटनाओं या विकास प्रक्रमों के बारे में लिख रहा होता है उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। इसलिए मान्यता यह है कि ऐसे इतिहास का लेखन पूर्वाग्रह रहित और वस्तुपरक नहीं हो सकता। वर्तमान या समकालीन इतिहास। समकालीन इतिहास की परिभाषा हम आगे करेंगे। लिखने में इतिहासकार की झिझक का पहला कारण वस्तुतः उतना प्रबल नहीं है जितना कि उससे कभी-कभी समझना हो जाता है। समकालीन इतिहास के संबंध में इतनी अधिक और विविध सामग्री उपलब्ध होती है कि कुछ एक सरकारी प्रलेखों और निजी कागजातों के अभाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता। अलबत्ता ऐसे ऐतिहासिक प्रश्न इसके अपवाद हैं जिनका समाधान सभी सरकारी दस्तावेजों, निजी कागजातों आदि के उपलब्ध होने पर ही हो सकता है। हाल के इतिहास के ऐसे अनेक प्रश्नों की कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगस्त 1991 में मॉस्को में हुए घटनाओं से उठने वाले प्रश्न। लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जैसे सामाजिक और आर्थिक जीवन, राजनीतिक संस्थाएं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और संस्कृति के विभिन्न घटक जिनके संबंध में समकालीन इतिहास लिखने के लिए जितनी आसानी से सामग्री मिल सकती है, उतनी आसानी से अतीत के किसी काल के इतिहास के लेखन के लिए नहीं मिल सकती है। और यह तो मानना पड़ेगा कि इतिहास के यह पहलू इतिहासकार के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा यह सामग्री विश्व के प्रायः सभी हिस्सों के संबंध में उपलब्ध है, यहाँ तक पूर्ववर्ती कालों का संबंध है, दुनिया के अधिकांश हिस्सों की आबादी तक से संबंधित ठीक-ठीक तथ्य मिलना मुश्किल होता है। पूर्वाग्रह का प्रश्न अधिक महत्व का है। हालांकि हाल के वर्षों के भारतीय समाचार पत्रों के पाठक इस बात के साक्षी हैं कि कुछ पेशेवर इतिहासकारों द्वारा भारतीय प्राचीन इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों और लेखों, कम से कम लोकप्रिय किस्म की पुस्तकों और लेखों में जितना पूर्वाग्रह दिखाई देता है, उतना हाल के वर्षों से संबंधित इतिहास का लेखन में नहीं पाया जाता। फिर भी पूर्वाग्रह का खतरा काफी गंभीर होता है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि पूर्वाग्रह केवल या मुख्य रूप से संकुचित दृष्टिकोण की उपज हो। इतिहासकार की दृष्टि पर उसके दार्शनिक दृष्टिकोण का, विश्व की समस्याओं को देखने के उसके आम रवैये का मुलम्मा चढ़ा हुआ हो सकता है। इतिहास लेखन के क्रम में संकुचित दृष्टिकोण के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन कोई भी इतिहासकार किसी न किसी प्रकार के दार्शनिक दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर इतिहासकार समकालीन समस्याओं और प्रश्नों को किसी न किसी खास नजरिए से देखता है। सच तो यह है कि इतिहासकार का सामान्य दृष्टिकोण या दार्शनिक नजरिया उसके अध्ययन का महत्वपूर्ण सहायक होता है। अपने सामान्य दृष्टिकोण या दार्शनिक नजरिए के बल पर ही वह अपनी आरंभिक प्रस्थापना हाइपोथेसिस की रचना करता है, जो उसके आगे के अध्ययन के लिए आधार का काम करती है। इस दृष्टिकोण के सहारे ही वह घटनाओं या अपने अध्ययन के विषय की एक सुसंगत तस्वीर तैयार करता है। लेकिन इतिहासकार को इस खतरे की ओर से हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि उसका सामान्य दृष्टिकोण कहीं संकीर्ण दृष्टि का रूप लेकर उसके लिए चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायक होने की बजाय बाधक न बन जाए। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक कृति का पाठक आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करे और इतिहासकार के सामान्य दृष्टिकोण और उसकी कृति पर उसके प्रभाव के प्रति सजग रहे। समकालीन इतिहास का अध्ययन करने में जो एक गंभीर समस्या सामने आती है, उसका संबंध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से या उस चीज से जिसे एक इतिहासकार ने अंत में क्या हुआ यह जानने से पहले के काल की किसी घटना के बारे में, जैसे इंग्लैंड के गृह युद्ध या प्लासी की लड़ाई के संबंध में लिखने वाले इतिहासकार को यह मालूम होता है कि उस घटना का अंत क्या हुआ और उसके दीर्घकालीन परिणाम क्या हुए, लेकिन युद्ध या शीत युद्ध के अंत के बारे में या भूतपूर्व सोवियत संघ से टूटकर बनने वाले गणराज्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी अंतिम परिणति के विषय में इतने ही विश्वास के साथ नहीं लिखा जा सकता। कुछ इतिहासकार तो 19वीं सदी का इतिहास लिखना भी निरापद नहीं मानते थे, क्योंकि इसमें उन्हें इतिहासकार के अध्ययन पर उसकी दृष्टि का रंग चढ़ जाने का खतरा दिखाई देता था और उनका ख्याल था कि अभी इतना समय नहीं बीत पाया है कि पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सुलभ हो सके। बेशक ऐसे इतिहासकारों की संख्या अधिक रही है जो हाल के इतिहास पर लिखने से बचते रहे हैं, और उनके इस रवैये के पीछे ज़्यादा सबल तर्क भी रहा है। हाल के इतिहास के एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगी कि समकालीन इतिहास लिखना कितना असुरक्षित हो सकता है। 1928 में एक विद्वान ने इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के एक नए संस्करण के लिए पूंजीवाद पर एक आलेख तैयार किया। इसमें उसने लिखा, पूंजीवाद को आज भी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पूंजीवाद में समय समय पर आने वाली व्यापारिक तेजी और मंदी को इसका कारण बताया जाता है, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि समय समय पर कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन उनकी तीव्रता अब बहुत कम हो गई है। यह आलेख इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में 1929 में प्रकाशित हुआ, और यही वह वर्ष था जब इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आरंभ हुई, जिसकी चपेट में विश्व के लगभग सभी हिस्से आ गए। 1920 वाले दशक में 1929 के पहले पश्चिमी दुनिया के कई पूंजीवादी देशों का तीव्र आर्थिक विकास हुआ था और उनकी समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इन सबको देखकर इस आलेख के लेखक को विश्वास हो गया कि आखिरकार पूंजीवादी व्यवस्था में अस्थिरता आ गई है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका आलेख प्रकाशित होते ही गलत साबित हो गया। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। मसलन हाल ही के कुछ घटनाओं से विश्व समाजवादी प्रणाली की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में कतिपय समाजवादी चिंतकों का दृष्टिकोण गलत साबित हो गया है। अभी 20-25 साल पहले एक इतिहासकार रूस के 1917 के बाद के घटनाचक्र को या विगत 7 दशकों के समाजवादी आंदोलन को जिस दृष्टि से देखता था, आज उसे वह उसी दृष्टि से नहीं देखेगा। इस संदर्भ में 20वीं सदी के इतिहास पर कुछ साल पहले 1994 से एरिक हॉब्सबॉम द्वारा लिखित एक पुस्तक का उद्धरण देना उचित होगा। इस पुस्तक के आमुख में उन्होंने लिखा है, 20वीं सदी के इतिहास को किसी भी इस प्रकार से नहीं लिख सकता जिस प्रकार से वह किसी अन्य काल के बारे में लिख सकता है। इसका सीधा कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल के बारे में उस तरह नहीं लिख सकता जिस तरह से वह किसी अन्य काल के बारे में लिखेगा, और किसी काल के बारे में लिखने के लिए वह उस काल का अध्ययन उस काल के बाहर से ही करेगा, और उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। मेरे जीवन की अवधि तथा इस पुस्तक में वर्णित इतिहास की अवधि लगभग एक है। इस अवधि के अधिकतम हिस्से में अपनी किशोरावस्था से अब तक मैं सार्वजनिक मामलों के प्रति सजग रहा हूँ, और इन मामलों के संबंध में मेरे विचार और मेरे पूर्वाग्रह एक शोधकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक समकालीन व्यक्ति के रूप में बने हैं। इसी कारण से 1914 के बाद की अवधि पर आमतौर पर मैंने एक इतिहासकार की हैसियत से नहीं लिखा। मैं इस अवधि के बारे में और हैसियतों से अवश्य लिखता रहता हूँ, लेकिन हॉब्सबॉम के अनुसार अब 1914 से सोवियत युग की समाप्ति तक के 20वीं सदी के इतिहास को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना मुमकिन है। काफी सारा समकालीन इतिहास अंतिम यानी ऐसा होना है जिसके अंत का हमें पता नहीं होता। उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्ष की घटनाओं के कारण 1990 में प्रकाशित इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के कुछ हिस्सों की सार्थकता पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसके प्रकाशन के 1 साल के अंदर ही सोवियत संघ, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विश्व की सर्वप्रमुख सैन्य शक्ति बताया जाता है, अपना अस्तित्व ही खो बैठा। जिस तरह के समाजवाद की रचना सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों में की गई थी, वह पूंजीवाद के विकल्प के रूप में लोगों के लिए अपना आकर्षण खो बैठी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में राज्य के रूप में जन्म लेने वाला और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला यूगोस्लाविया टूट गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था का अंत हो गया और वहां लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित गैर नस्ली सरकार सत्तारूढ़ हुई। विकास के अलग अलग मार्गों का अनुसरण करने वाले दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में जर्मनी का विभाजन समाप्त हो गया। इनमें से कुछ बदलावों के बारे में हमें कोई पूर्वाभ्यास तक नहीं था और ना हम सोचते थे कि यह बदलाव इतनी तेजी से हो सकता है। इस प्रकार समकालीन इतिहास के बहुत बड़े अंश में वह निर्णायकता या अंतिमता नहीं है जो पहले के कालों के इतिहास में है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि पूरा का पूरा समकालीन इतिहास अनंतिम या ऐसा नहीं होता जिसके बारे में हम कुछ भी यकीन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार किसी भी नए वैज्ञानिक शोध से यह कथन गलत साबित होने वाला नहीं है कि पृथ्वी चौरस नहीं है, इसी प्रकार यह कथन भी किसी बात से झुठलाया नहीं जा सकता है कि यूरोपीय शक्तियों ने 19वीं सदी या उससे पहले से जिस साम्राज्यवाद प्रणाली की रचना की थी, वह द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत लगभग 2 दशकों के अंदर ही बिखर गई। साम्राज्यवाद के बिखराव से संबंधित यह कथन समकालीन विश्व के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास प्रक्रम की जानकारी देता है। समकालीन इतिहास के और भी कई महत्वपूर्ण विकास प्रक्रम हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी को अनंतिम नहीं कहा जा सकता। यद्यपि काफी कुछ ऐसी बातें भी होगी जिनके बारे में हमारी जानकारी फिलहाल अनंतिम ही रहेगी। इस सब के बावजूद हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसे और उसकी समस्याओं को समझने के लिए समकालीन इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है, भले ही वह जानकारी अनंतिम ही क्यों ना हो। समकालीन इतिहास क्या है? इस प्रश्न के अनेक और विविध उत्तर दिए जा सकते हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ वह सब जो समकालीन इतिहास लिखते समय ही घटित हो रहा है, या फिर उन घटनाओं का विवरण जिनके बीच इतिहासकार ने जीवन गुजारा है। लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसे इतिहास का एक निश्चित काल मानते हैं और जिसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। गरज यह कि यहाँ भी स्थिति वैसी ही है जैसे कि प्राचीन, मध्य या यहाँ तक कि आधुनिक काल के इतिहास के बारे में है, जिनमें से प्रत्येक से एक विशिष्ट काल और मोटे ढंग की ही सही कुछ खास विशेषताओं का बोध होता है। कुछ इतिहासकार हाल के आधुनिक इतिहास को समकालीन इतिहास मानते हैं। 1960 वाले दशक के आरंभ में लिखते हुए एक इतिहासकार कहता है, हमारे युग का एक ऐसा सुपरिभाषित स्वरूप है कि हम समकालीन इतिहास की बात एक विशिष्ट अर्थ में कर सकते हैं। 1945 से आज तक के महत्वपूर्ण वर्षों को समकालीन इतिहास का विशेष क्षेत्र माना जा सकता है। 1986 में प्रकाशित अपनी एक कृति में एक रूसी इतिहासकार 1917 से 45 तक के काल को समकालीन इतिहास का प्रथम चरण बताता है। वह आगे लिखता है, समकालीन इतिहास रूस की 1917 की महान अक्टूबर क्रांति से आरंभ होता है। इस क्रांति ने मानव जाति के भाग्य में एक आमूल परिवर्तन का सामान जुटाया है। उसने शोषक वर्गों के शोषण की स्थिति से शोषण के उन्मूलन की ओर सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पश्चिमी यूरोप के बहुत से इतिहासकारों ने 1914 से 1945 के बीच के वर्षों को समकालीन इतिहास का क्षेत्र माना। शायद यह इस दृष्टि का द्योतक है कि इस दौरान जो कुछ यूरोप में घटित हुआ वही विश्व की केंद्रीय शक्ति था। 1965 में एक फ्रांसीसी इतिहासकार की एक कृति प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था, मेजर कंट्रोवर्सीज ऑफ कंटेम्पोररी हिस्ट्री, समकालीन इतिहास के कुछ बड़े विवाद। इसमें 11,000 प्रकाशित रचनाओं के विश्लेषण तथा व्यक्तिगत भेंटकर्ताओं के जरिए 1914 से 1945 तक के काल के 65 विवादों का अध्ययन सम्मिलित है। इस पुस्तक में अधिकांश विवादों का संबंध यूरोप की घटनाओं से था। इनमें से कुछ एक यूरोप के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति के बारे में और दो का संबंध रूस और संयुक्त राज्य से जापान के रिश्तों से था। इस पुस्तक में विश्व के अन्य किसी भी हिस्से की कोई चर्चा नहीं थी। आज पूरी दुनिया के इतिहासकारों में 20वीं सदी को समकालीन इतिहास का विशिष्ट भाग मानने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। 20वीं सदी के इतिहास को समकालीन इतिहास मानने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि तिथि क्रम की दृष्टि से यह एक सुविधाजनक काल है, यह काल का आधुनिक इतिहास है, बल्कि इसका कारण यह मान्यता है कि इस काल का एक सुपरिभाषित स्वरूप है और इस स्वरूप के कारण यह इतिहास का एक पृथक काल बन जाता है, आधुनिक इतिहास से भी पृथक काल। समकालीन इतिहास या 20वीं सदी के इतिहास को अधिकाधिक समकालीन विश्व के इतिहास के रूप में देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि आज मानव जाति में यह जागरूकता पैदा हो गई है कि उसके सभी सदस्य विश्व समुदाय से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। 20वीं सदी के ठीक पहले के काल को संकुचित दृष्टि से देखना और यह मानना संभव था कि यूरोप विश्व इतिहास में प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन अब ऐसी दृष्टि सतही तौर पर भी तर्कसंगत नहीं रह गई है और 20वीं सदी के किसी भी इतिहास में पूरी दुनिया को दृष्टि में रखकर चलना आवश्यक हो गया है, जैसा पहले नहीं था। जाफरी बैरकलो ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्पोररी हिस्ट्री, समकालीन इतिहास का परिचय में लिखा है। समकालीन इतिहास का एक विशिष्टता सूचक तथ्य यह है कि वह विश्व का इतिहास है और उसको रूपाकार देने वाली शक्तियों को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम विश्वव्यापी दृष्टि अपनाकर विचार करने को तैयार ना हों। जिस काल को उन्होंने समकालीन कहा है उसे वे आधुनिक इतिहास से गुणवत्ता तथा अंतर्वस्तु दोनों दृष्टि से भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार समकालीन इतिहास की अपनी ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे उससे पहले के काल से उसी तरह अलग करती है जिस तरह मध्यकालीन नाम से जाना जाने वाला इतिहास आधुनिक कहे जाने वाले इतिहास से अलग दिखता है। यद्यपि समकालीन इतिहास को कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, तथापि बैरकलो के अनुसार इस इतिहास की शुरुआत उस समय से होती है जब आज की दुनिया की वास्तविक समस्याएं अस्पष्ट रूप ग्रहण करने लगती है। वे मानते हैं कि वह समय 19वीं सदी का अंतिम दशक था। एरिक हॉब्सबॉम की पूर्व उद्धत पुस्तक एज ऑफ एक्सट्रीम, चरम सीमाओं का युग का शीर्षक लघु 20वीं सदी 1914 से 1991 है। इस पुस्तक के अनुसार प्रथम युद्ध के शुरू होने से लेकर सोवियत संघ के ध्वस्त होने तक की अवधि को जब हम आज देखते हैं तो यह अवधि एक संबद्ध ऐतिहासिक युग के रूप में नजर आती है, एक ऐसा युग जो अब समाप्त हो गया है और अब इस बात में किसी गंभीर संदेह की गुंजाइश नहीं है कि 20वीं सदी के 9वें दशक के अंतिम वर्षों तक 10वें दशक के आरंभिक वर्षों के दौरान विश्व इतिहास का एक युग समाप्त हो गया और एक नए युग का आरंभ हुआ।